इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।
इंसान को जीने की कला सिखलाता है राजयोग।
ओम शांति। हमारा मन सदा कैसे खुश रहे? सभी का मन खुश है? सभी खुश हैं? जैसे बाबा ने कल कहा, हमारा कल मीठे बाबा ने कितनी अच्छी मुरली हम सबके लिए चलाई है। बाबा ने कहा कि आज सारे विश्व में हर व्यक्ति में दो चीजें बढ़ती जा रही हैं। कौन कौन? चिंता और भय। मन के रोग सबको हैं, सबका मन रोगी हो गया है। तो मन को हम निरोगी कैसे बनाएं, सदा खुशनुमा कैसे बनाएं, और साथ साथ तन के भी रोग बहुत बढ़ गए हैं। तन के भी देखो तो रोग, आज कहते 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं। बीमारियां कम नहीं हुई हैं, डॉक्टर्स जैसे से बड़े हैं, हॉस्पिटल जैसे से बड़े हैं, बीमारियां कम हुई ज्यादा हुई हैं, ज्यादा हो गई हैं। तन के रोग भी बढ़ गए, मन के रोग भी बढ़ गए। तो आज हम उनको बहुत गहराई से अध्ययन करेंगे कि मन के रोग क्यों बढ़े, तन के रोग क्यों बढ़े, और उनका हम कैसे राजयोग द्वारा, क्योंकि बाबा कहते हैं राजयोग द्वारा ही इस विश्व को हमें क्या बनाना है, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनाना है। तो उसमें पहले एवर हेल्दी आता है। तो आज हम इसकी बहुत ही अच्छे से गहराई में बाबा की मूल्यों के आधारित करते हुए, साथ साथ विज्ञान का भी आपस में बैलेंस करते हुए इसी गहराई में हम जाएंगे। तो इसके लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि हम सभी 2 मिनट मन और बुद्धि को एकाग्र कर लें, इधर उधर से समेट करके एकाग्र कर लें, ताकि हम इन बातों को जीवन में अपने उतार सकें, प्रैक्टिकल जीवन में ला सकें। कल की बाबा की मुरली के कुछ पॉइंट भी हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, कैसे बाबा ने हमें डायरेक्शन दी है कि अपने मन और तन को हम सदा स्वस्थ भी बनाएं और सदा खुशनुमा भी कैसे बनाएं, और डे टू डे जो प्रॉब्लम्स हमारे घर में आती हैं, हमारे उसमें भी, उसको भी कैसे हम तनाव को भी कैसे मुक्त, तनाव से कैसे मुक्त बन सकें। तो ये इस क्लास में हम आज यही बातें डिस्कस करेंगे। इसके लिए सभी 2 मिनट के लिए सभी अपने अंदर चले जाएं और बहुत गहराई से मन और बुद्धि को एकाग्र करेंगे। 2 मिनट के लिए सभी एकांत, एकदम साइलेंस में चले जाएंगे। ओम शांति। जैसा कि आप सबको पता है, जैसे हम अभी कभी आपसे बात भी कर रहे थे, कि आज सारे विश्व में एक भी मनुष्य ऐसा नहीं है जिसको कोई ना कोई रोग ना हो। आज सभी मनुष्यों को, चाहे कोई भी, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, चाहे पढ़ा लिखा है, चाहे अनपढ़ है, सभी के सभी रोगी हैं। कोई ना कोई दुख जरूर है। अगर हम शरीर के रोगों की बात करें तो आज लगभग 100 लोगों को 200 रोग हैं। अगर हम एक किसी भी शहर की बात करते हैं, उसमें 100 लोगों में से 30 लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है, 12% लोगों को डायबिटीज है, 15% लोगों को हार्ट की बीमारी है, 10% लोगों को सांस की बीमारी है, 25% लोगों को एसिडिटी की बीमारी है, 20% लोगों को हड्डियों की बीमारी है। हड्डियां खोखली हो जाती हैं, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है। 10% लोगों को आंखों की, नाक कान गले की बीमारियां हैं। 5 से 10% लोगों को स्किन की बीमारियां लगी हुई हैं। 5% लोगों को कैंसर है। लगभग 5% लोगों को हार्मोन्स की डिजीज है, थायराइड की प्रॉब्लम्स हैं और दूसरी तरह की बीमारियां हैं। तो लगभग देखें तो 100 लोगों को 200 बीमारियां हैं एवरेज, है ना? अगर मन के रोगों की बात करें तो 100 में से 10 लोग तो उदास हैं, डिप्रेशन में हैं। 100 में से 10 लोगों को नींद नहीं आती, दवाई खाके सोते हैं, दवाई खाके भी कई बार नींद नहीं आती है। और चिंता तो सबको है। आप में से कोई ऐसा जिसको कोई चिंता ना हो, हाथ उठाएं, जिनको चिंता बिल्कुल नहीं है। देखो 4-5 लोगों ने हाथ उठाया, 10 लोगों ने, है ना? नीचे नीचे कर ले। अच्छा, आप में से कितने लोग चिंता करना चाहते हैं, बात उठाओ। जो चिंता करना चाहते, कोई चिंता नहीं करना चाहता, फिर भी 95% लोग चिंता करते हैं। वो 5% जिन्होंने हाथ उठाया वो भी शायद चिंता तो करते हैं। अच्छा, आप में से गुस्सा करना कितने जो नहीं चाहते हाथ उठाओ, जो गुस्सा नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, जो करना चाहते हैं हाथ उठाओ, नीचे करो। जो गुस्सा करना चाहते हैं हाथ उठाओ, कोई गुस्सा नहीं करना चाहता। और जो गुस्सा नहीं करते कभी हाथ उठाओ, जो गुस्सा कभी नहीं करते हैं 100%। देखो, सिर्फ 1, 2, 3, 4, 5 लोगों ने हाथ उठाया, सिर्फ 5 पांडव हैं, है ना। तो ये चिंता करना, गुस्सा करना, उदास होना, थोड़ी थोड़ी बात में डर लगना, और या दूसरे में दोष निकालना, समय की जल्दी, समय का जल्दीपन रहना, दूसरों के प्रति वैर भाव रखना, ईर्ष्या रखना, ये सब मन के रोग हैं जो आज सबके अंदर व्याप्त है। गरीब से गरीब में भी हैं, अमीर से अमीर में भी हैं, बहुत पढ़े लिखे उनमें भी हैं, डॉक्टर्स में भी हैं, इंजीनियर्स में भी हैं, है ना, सभी IAS ऑफिसर्स में भी हैं, पॉलिटिशियंस में भी हैं, सब में। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसमें मन के रोग ना हो। तो क्या किया जाए, ऐसे में क्या करें? और जो हमारी ट्रेनिंग है, डॉक्टर्स को जो ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें कहीं भी सिर्फ बॉडी के बारे तो पढ़ाते हैं कि मन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाते हैं। और अभी ये सिद्ध हो गया है, 1976 के पहले नहीं मानते थे, किंतु 1976 के बाद, 1976 के बाद ये मानना शुरू किया कि बीमारी पहले मन में पैदा होती है, मन से फिर शरीर में आती है, फिजिकल बॉडी में आती है। और उस समय 1976 में मानते थे 70% रोग जो है पहले मन में पैदा होते हैं, फिर बॉडी में आते हैं। किंतु आज 2000 के बाद, 2010 में ये माना जाता है लगभग हर रोग, चाहे कोई भी रोग हो, 100% रोग जो है मन में पहले पैदा होते हैं। इवन एक्सीडेंट जो होते हैं वो भी मन से होते हैं, जुखाम भी, उसमें भी मन का रोल है, हड्डियों के दर्द में भी मन का रोल है, सिर दर्द में भी मन का रोल है, हर चीज में, हार्ट डिजीज में, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, गैस बनना, एसिड बनना, बदहजमी होना, कब्जी होना, सब में मन का रोल है। और जो बीमारी शब्द है ना, बीमारी इंग्लिश में कहते हैं डिसईज, डिजीज शब्द है ना, डिजीज, अगर उसको संधि विच्छेद करें तो क्या बनेगा, डिसईज। डिसईज मतलब लॉस ऑफ ईज, मतलब शांति खत्म हो जाना, अंदर की शांति खत्म हो जाना, उसको बीमारी कहते हैं। और जो बीमारी शब्द है ना, उसके भी दोष का भी संधि विच्छेद करें तो क्या बनता है, बी माना भय, मारी माना बने रहना, अर्थात भय बने रहना। जब आप लंबा समय भय की स्थिति में रहते हैं, डर की स्थिति में रहते हैं, इनसिक्योरिटी, असुरक्षित भावना में रहते हैं, तो आपके अंदर रोग जन्म लेते हैं। और आपने देखा है कि जैसे कल बाबा ने भी मुरली में कहा कि अभी तरह तरह के रोग पैदा होंगे, प्रकृति में परिवर्तन हो रहे हैं, मन में भी लोगों के परिवर्तन हो रहे हैं, तरह तरह के रोग, नए नए प्रकार के रोग, जैसे HIV/AIDS आया, फिर चिकनगुनिया आया, अभी फिर बर्ड फ्लू आया, अभी कौन आया, अभी स्वाइन फ्लू आया, है ना। तो तरह तरह के अभी क्या हो रहा है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, उनमें म्यूटेशन हो रही हैं। म्यूटेशन समझते हैं, उनके जीन्स में ऐसे परिवर्तन हो रहे हैं कि जिन चीजों से वो कीटाणु मर जाया करते थे, वो दवाई इसका उस पर असर ही नहीं होगा। दवाई देने के बाद भी कीटाणु नहीं मरेंगे। अभी टीबी के कीटाणु भी जो पहले दवाई से मर जाते थे, मरते ही नहीं है। आम जो जितने भी गले खराब के, इन्फेक्शन के कीटाणु होते थे, निमोनिया के कीटाणु होते थे, पेट के खराब के कीटाणु होते थे, दवाइयों से मर जाते थे, किंतु अभी नए जो कीटाणु आ रहे हैं वो दवाई से मरते ही नहीं है। तो अब ये स्थिति आकर के पहुंची है कि अब, इसलिए कल बाबा ने कहा डबल डॉक्टर्स, सिंगल डॉक्टर भी काम नहीं आएंगे, सिंगल डॉक्टर्स के तो आने से बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, है ना। 1960 में जो 100 में से एक आदमी को हार्ट की बीमारी होती थी, आज 100 में से 15 लोगों को हार्ट की बीमारी होने लगी है, बढ़ गई है। 60 साल की उम्र में हार्ट अटैक आता था 1960 में, आज 25 साल के आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है। पहले ब्लड प्रेशर 1 या 2% लोगों को होता था, आज 30% लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है। 14% बच्चों को हाई ब्लड प्रेशर हो गया है ना। तो दिन पे दिन सब तरह के रोग बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं। तो क्या करें ऐसी हालत में, कारण क्या है? आप क्या समझते हैं क्या कारण है रोगों को बढ़ने का? पहले भाई बताएं क्या कारण है रोगों को बढ़ने का, रोग क्यों बढ़ रहे हैं? हैं जी, चिंता से, तनाव से, और हैं जी नकारात्मक विचारों से। और बहनें बताएं, हैं जी इच्छाएं बहुत ज्यादा हो गई हैं, और एक जना बताओ ना खड़े होकर, मानसिक चिंताएं बहुत ज्यादा हो गई है, ड्रामा अनुसार रोग बढ़ रहे हैं। ये भी अच्छा आंसर है ना, इसमें ड्रामा में सब कुछ आ गया है। ठीक है, देहभान से रोग बढ़ रहे हैं, प्रकृति का बैलेंस नहीं है इसलिए रोग बढ़ रहे हैं। ठीक बात। चलिए तो अभी हम आपसे ये रोगों के बढ़ने का मुख्य कारण क्या है, पांचों तत्व दूषित हो चुके हैं। देखिए जो आत्मा है ना, ये आत्मा जो शरीर को चला रही है, कैसे चला रही है? आप सबने बचपन में कविता पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो जो कवि था ना, जिस कवि ने कविता लिखी थी, उस कवि ने जो कविता लिखी है, तो उसका दिन में एक फ्रेंड था, बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, उसकी डेथ हो जाती है, बहुत ही क्लोज उसका मित्र था। तो शाम का समय है, उदास बैठा है और बाहर देख रहा है, आसमान में तारे निकले हुए थे, तो क्रिश्चियन था, ही वॉज ए क्रिश्चियन। तो वहां ऐसा मानते हैं कि आत्मा का कनेक्शन, आत्मा को स्टार के रूप में मानते हैं वो लोग, इंसान को भी स्टार के रूप में मानते हैं। तो उसके मन में विचार आ रहा है कि मेरे दोस्त सुबह तो ठीक था, अचानक क्या हुआ उसको, अचानक वो मर गया, ऐसा क्या था उसके अंदर, और मैं ठीक ठाक हूं, कल मैं भी ऐसे मर जाऊंगा। तो तब उसको रियलाइज होता है कि कोई ऐसा आत्मा रूपी एक स्टार है जो कि शरीर को चलाती है, और उस स्टार में से ऐसा क्या चीज निकलती है जिससे बॉडी चलती रहती है, और जब तक वो स्टार चमकता रहता है तो सब कुछ काम करता है, और स्टार निकल जाता है तो कुछ भी काम नहीं करता है। इसलिए उसने कविता क्या लिखी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, मतलब वो आश्चर्य खा रहा है कि ये सितारा कैसे बॉडी को चलाता है। उसको तो ज्ञान मिला नहीं था, ज्ञान मिला था उसको, सेंटर में आया था क्या वो? सेंटर में आया नहीं, तो उसको पता नहीं था कि कैसे आत्मा शरीर को चलाती है। आत्मा की तीन शक्तियां मन बुद्धि संस्कार होते हैं, आत्मा से सात एनर्जी बॉडी में निकलती है, उसको पता नहीं था, इसलिए उसने लिखा हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। और हम कैसे गाएंगे, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार नाउ आई नो व्हाट आई एम, हम ऐसे नहीं गाएंगे ना व्हाट यू आर। तो हमें तो पता है ना आत्मा कैसे शरीर को चलाती है, क्योंकि बाबा ने हमें ज्ञान दिया है। तो आत्मा से सात एनर्जी निकलती रहती है, आत्मा जैसे इस बल्ब से दो 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 एनर्जी निकल रही है, कौन कौन सी, लाइट और हीट। लाइट भी निकल रही है, प्रकाश भी निकल रहा है, और गर्मी भी निकल रही है, इससे दो एनर्जी निकल रही है। ऐसी आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा से सात एनर्जी निकलती है, और सात एनर्जी सारी बॉडी में फैल जाती है, और सात एनर्जी से ही शरीर का निर्माण होता है। कौन कौन सी एनर्जी है वो, पहली एनर्जी है ज्ञान, ज्ञान यहां से निकलता है और सारी बॉडी में फैल जाता है। ज्ञान क्या है, कैसे ज्ञान का विस्तार तो बहुत बड़ा है, किंतु सार रूप में कहें तो ज्ञान का सार रूप में क्या है, ज्ञान ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो ए बी सी डी क्या ज्ञान हुआ, ए फॉर आत्मा, ए फॉर बोलो सभी, ए फॉर बी फॉर बाबा, सी फॉर कनेक्शन, है ना, मतलब आत्मा परमात्मा और कनेक्शन, सर्व संबंध मेरे उसके साथ है, और डी फॉर ड्रामा, अर्थात संसार रूपी ड्रामा में हम सब एक्टर्स हैं, और हम सबका एक्यूरेट पार्ट इस ड्रामा में है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो ये जो ये जो साउंड है यहां से, एक तरह की साउंड यहां से निकलती है और पूरी बॉडी में हमारी सेल्स लगभग 70,000 बिलियन सेल्स हमारी बॉडी में होती हैं, 70,000 बिलियन सेल्स। एक बिलियन में 100 करोड़ होते हैं। जैसे एक मकान ईंटों से बना होता है ना, ऐसा हमारा बॉडी कोशिकाओं से बनी, सेल्स से बनी होती है। तो एक तरह की, जैसे आपने सुना होगा, एक तो साउंड होती है जो हम सुन रहे हैं, जो आप, मैं बोल रहा हूं आप सुन रहे हैं ना, एक अल्ट्रासाउंड होती है। अल्ट्रासाउंड कानों से सुनाई नहीं देती है, किंतु वो भी एक साउंड है। जैसे हमें अगर समुद्र की गहराई नापनी है तो हम क्या करते हैं, वहां इंची टेप लेके जाते हैं क्या नीचे नापने के लिए? नहीं, एक मशीन से साउंड भेजते हैं, अल्ट्रासाउंड भेजते हैं, और मशीन नीचे, वो साउंड नीचे जाती है, अल्ट्रासाउंड वेव्स, और समुद्र के तले को छू करके वापिस आ जाती है। तो जितनी देर में गई, जितनी देर में वापिस आई, उससे हम उसकी समुद्र की गहराई नाप लेते हैं। हार्ट का इको करते हैं ना, अल्ट्रासाउंड पेट का करते हैं, तो जहां पर जो चीज टिश्यू है कितनी दूर है यहां से, उसकी उसकी वो उसकी फिर इमेज बना देती है स्क्रीन पर। हार्ट की भी इमेज इकोकार्डियोग्राफी में इमेज बन जाती है। तो ऐसे ही यहां से एक साउंड, जो कि एक साउंड कैसी साउंड है, वो लगातार जाती रहती है बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं अनहद नाद। अनहद नाद समझते हैं, जो कभी, अनहद माना अनलिमिटेड, जो कभी खत्म ना हो, सदा चलता रहे। इसी कारण जब तक वो यहां से साउंड जाती रहती, मैं हूं, एक फिल्म बनी थी ना, मैं हूं ना, मतलब मैं आत्मा हूं, मैं तुम्हें चलाने के लिए हूं, मेरा कनेक्शन किससे है? परमात्मा, परमात्मा से है। क्या वो कौन है मेरा? वो मेरी मां भी है, पिता भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, बंधु भी है, सखा भी है, साजन भी है, सर्जन भी है, बच्चा भी है, सर्व संबंध मेरे उसके साथ हैं। और संसार रूपी ड्रामा जो सामने देख रहे हैं, वो एक ड्रामा है, उसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, और जो होने वाला बहुत अच्छा। तो ये जो एक साउंड समझो, एक तरह के वाइब्रेशन समझो, सारी बॉडी के हर सेल पे जाते रहते हैं। ये पहली एनर्जी जो है यहां से जाती रहती है बॉडी की हर कोशिका के ऊपर। दूसरी एनर्जी है पवित्रता की एनर्जी। ज्ञान से ही पवित्रता जन्म लेती है। परमात्मा के लिए हम क्या कहते हैं, बाबा के लिए हम क्या कहते हैं? वो ज्ञान का सागर है, फिर पतित पावन है। कैसे हमको पतित, कैसे हमको पावन बनाते हैं, किस चीज से हमको पावन बनाते हैं? ज्ञान से बनाते हैं, है ना। ज्ञान के बगैर पतित पावन कह सकते हैं? ज्ञान से हम पतित से पावन बनते हैं। ज्ञान मिलता है तो पतित से पावन बनते हैं ना। तो ये जो है दूसरी एनर्जी पवित्रता है। तीसरी एनर्जी शांति है। तो ज्ञान से पवित्र, जब एबीसीडी आया बुद्धि में तो मन पवित्र हुआ ना, पवित्रता आई तो शांति आ गई, शांति आई तो प्रेम आया, रूहानी प्रेम आया। प्रेम, रूहानी प्रेम आया तो अतीन्द्रिय सुख आया। अतीन्द्रिय सुख माना, एक होता है इंद्रियों का सुख, इंद्रियों का सुख माना खाने का सुख, देखने का सुख, सुनने का सुख, बोलने का सुख, छूने का सुख, है ना, ये इंद्रियों का सुख है। एक होता है अतीन्द्रिय सुख, अतीन्द्रिय माना इंद्रियों से ऊपर का सुख, वह है आत्मा और परमात्मा के मिलन का सुख, अंदर का सुख। तो वो सुख जब हमें रूहानी प्रेम होता तो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है, आत्मा से आत्मा का मिलन, आत्मा से परमात्मा का मिलन, उससे हमें अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। और अतीन्द्रिय सुख की जब चरण सीमा होती है, उसे आनंद कहते हैं। और आनंद जब हमें आता है तो हमारे अंदर शक्तियां आती हैं, परखने की शक्ति। जैसे अगर आपको कोई, जैसे अब जब जब हम ज्ञान में नहीं थे, बाबा जब हमें नहीं मिला था, तो कोई चीज खानी होती तो हम क्या करते थे, किसी के पास बहुत अच्छी चीज मिलती थी ना, किसी के पास दूर है, मान लीजिए हमसे कोई दुकान बहुत दूर है, 10 किलोमीटर दूर भी है, किंतु उसकी चीज बहुत अच्छी मिलती है, तो 10 किलोमीटर भी उसके पास चीज लेने के लिए जाएंगे कि उसकी टेस्टी, उसकी चीज बहुत अच्छी बनाता है, उसके पास जाएंगे, है ना। तो परखने की शक्ति की, हमें कौन सी चीज हमें सुख देती, आनंद देती है, वो परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सब काम भूल के उसके फेवर में निर्णय कर लेना, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति, पहाड़ जैसी बात को भी छोटा कर लेना, राई बना देना, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति। किसके लिए सहन करें? जैसे लोग पहले फिल्म देखते थे, बहुत लंबी लाइन होती थी, है ना, तो फिल्म देखने के लिए हालांकि क्या करना है, धक्के खा रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, धक्के खा के भी टिकट लेते थे, है ना, वो आनंद नहीं, वो तो मतलब उनको एक तरह मजा आता था फिल्म देखने का, तो उसके लिए वो सहन भी करते थे, है ना, सामना भी करते थे, समा भी लेते थे, सहयोग भी करते थे। तो इस तरह जो शक्तियां जो है वो आनंद, जिस चीज में आनंद आता है ना, उसके लिए हम परखना, निर्णय करना, बड़ी से बड़ी बात छोटा करना, समेटना, सहन, सामना, समाना, सहयोग, है ना, ये आठ शक्तियां। तो ये सीक्वेंस है सातों एनर्जी की जो आत्मा से निकलती है, सारी बॉडी को नरिश करती है, और ये आत्मा की इननेट एनर्जीज है, अंदर की एनर्जी है, बाहर से नहीं है, अंदर से है। जो सत्व प्रधान शब्द आया ना, सत्व प्रधान शब्द कहां से आया, सात से, सत्व शब्द सात से आया, प्रधान माना फुल, फुल इन सेवन। जब आत्मा इन सातों गुणों में भरपूर है तो सत्व प्रधान कहलाती है, और सत्व प्रधान शब्द ही को पावन कहा जाता है। जब आत्मा सातों गुणों में भरपूर है उसे पावन कहा जाएगा, पावन आत्मा। सतयुग में क्या था कि हम सत्व प्रधान थे, पावन थे, तो आत्मा सातों गुणों में भरपूर थी, ज्ञान से भरपूर, पवित्रता से भरपूर, शांति, प्रेम, सुखानंद, शक्तियों से भरपूर थी। तो साथ में प्रकृति भी ऐसी, पांचों तत्व आकाश, अग्नि, वायु, जल और पृथ्वी, ये भी पावन सत्व प्रधान थे। तो उस समय जो ऑक्सीजन थी धरती पर, आज धरती पर 20% ऑक्सीजन है, उस समय धरती पर ऑक्सीजन 50% थी सतयुग में। वो आप मुझसे पूछेंगे वो कैसे पता आपको 50% ऑक्सीजन थी, जो एंटार्क्टिका है ना द्वीप, एंटार्क्टिका जो नीचे हिंद महासागर के नीचे, वहां पर उन्होंने डीप, वहां पर 8 किलोमीटर मोटी बर्फ जमी हुई है, 8 किलोमीटर मोटी बर्फ की लेयर जमी हुई है, और वहां नीचे पहाड़ है, पहाड़ों के अंदर गुफाएं थी, और गुफाओं में जो उन्होंने ड्रिलिंग करके देखा तो वहां पर ऑक्सीजन पाई गई 3000 साल पहले, 50% ऑक्सीजन पाई गई उन गुफाओं के अंदर। तो वो कहते हैं कि 3-4 हजार साल पहले उन गुफाओं, मतलब धरती पर 50% ऑक्सीजन थी। आज 20% ऑक्सीजन, तो हमारा रंग कैसा है, लाल है ना, आज भी लाल है ना। आप सोचो 50% ऑक्सीजन धरती पर होगी तो उस समय कैसे आदमी लाल होते होंगे, कैसे लाल होते होंगे, सोचो जरा। तो वहां सोने जैसी काया, कहते हैं ना सोने जैसी काया, कंचन काया। 20% जहां ऑक्सीजन है तो आज मच्छर मक्खी है, किंतु सतयुग में क्या होगा, ये मच्छर मक्खी कहां रहते हैं, छिपकली कहां रहती है, सांप कहां रहते हैं, जहां ऑक्सीजन कम होती है बिलों में रहते हैं, चूहे कहां रहते हैं, जहां बिल होते हैं, जहां ऑक्सीजन कम होती है। ऑक्सीजन खूब सारी हो तो वहां एक भी मच्छर मक्खी जिंदा नहीं रह सकता, कोई वायरस बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह सकता। तो वहां पर इसे सतयुग में 50% ऑक्सीजन है, ना मक्खी है, ना मच्छर है, ना वायरस है, है ना, ना बैक्टीरिया है, ना चूहा है, ना सांप है, ना छिपकली है, है ना, वहां ये चीज जिंदा ही नहीं रह सकती है, वहां इनका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, बदबू वहां हो ही नहीं सकती है। तो वहां प्रकृति सत्व प्रधान है, इसलिए वह कंचन काया है। तो सतयुग में हमारा ये रूप था, कोई बीमारी हुई नहीं, होती नहीं थी, सब अंगों में एनर्जी खूब बहती थी, और प्रकृति के पांचों तत्व भी सत्व प्रधान थे, भोजन भी सत्व प्रधान था, फल भी बहुत सुंदर सुंदर थे, क्योंकि पांचों तत्व, ऑक्सीजन बहुत ज्यादा थी, बड़े बड़े फल होते थे, खूब रसदार फल होते थे। और फिर सतयुग त्रेता बीता तो क्या हुआ, जो एनर्जी थी ना वो आधी हो गई, ये सात गुण आधे हो गए। माना रजो शब्द, माना रजो माना शाम, जब रजो शब्द रजो प्रधान माना ये सातों, ज्ञान आधा हो गया, पवित्रता आधी हो गई, शांति आधी हो गई, प्रेम आधा हो गया, सुख आधा हो गया, आनंद आधा हो गया, शक्तियां आधी हो गई। तो वो समय रजो प्रधान माना आत्मा में सातों गुण कम हो गए। तो सातों गुण कम हुए तो जैसे से आत्मा में डिस ईज आने लगी, जब आत्मा सातों गुणों से भरपूर है तो क्या हुआ, ईज है, शांति, प्रेम, खुशी भरपूर है। जब वो कमी 50% से कम 49% हुआ, 48%, 45% हुआ, तो क्या हुआ, डिस ईज होने लगी, लॉस ऑफ ईज, पहले मन में आई फिर बॉडी में आने लगी, और उससे रोगों का जन्म हुआ। तो रोग क्यों आए, इन सातों गुणों की कमी से आए, सातों गुणों की कमी से ये रोग पैदा हुए, मन के रोग भी, तन के रोग भी। फिर आ गया कलयुग, कलयुग आते आते ये सातों गुण और कम हो गए। तमो प्रधान, तमो मीन्स अंधेरा रात, तो सातों गुण जब लगभग ना के बराबर रह गए तो ये अंगों में एनर्जी जाने कम हो गई, और अंगों में एनर्जी जाने कम हो गई तो ये हमें तरह तरह के रोग हमें फील होने लगे। अब जैसे दिमाग के लिए कौन सा, सातों एनर्जी बॉडी के लिए हर अंग के लिए आवश्यक है, तो एक गुण एक अंग के लिए स्पेशल है। जैसे हम एग्जाम्पल देते हैं ना कई बार, मान लीजिए आपको चाय बनानी है, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए आपको, चार चीजें चाहिए, गैस वगैरह तो घर में है ठीक है, पर चार चीजें चाहिए, क्या चाहिए, एक तो पानी चाहिए, चाय की पत्ती चाहिए, चाहिए ना, दूध चाहिए, चीनी चाहिए, किंतु किसके बगैर चाय नहीं बनेगी, किसके बगैर चाय नहीं बनेगी, अगर पानी ना हो तो भी चाय बन सकती है ना, नहीं बन सकती है, दूध में चाय की पत्ती डाल दो तो चाय बन जाएगी ना, नहीं नहीं, अगर चीनी ना हो तो भी बिना चीनी की चाय बन जाएगी, नहीं, अगर दूध ना हो तो बिना दूध की चाय बन जाएगी, किंतु अगर चाय की पत्ती ना हो तो क्या होगा, चाय बन ही नहीं सकती। इसी तरह से जो आत्मा से सात गुण जो निकल रहे हैं ना, बॉडी के हर अंग को चाहिए, किंतु एक गुण स्पेशल है एक अंग के लिए। दिमाग के लिए कौन सा गुण चाहिए, ज्ञान चाहिए, अगर ज्ञान ना हो तो दिमाग को दिमाग कहेंगे क्या, तो आत्मा ज्ञान के द्वारा दिमाग को नरिश करती है, ABCD के द्वारा। माध्यम क्या है, मन, मन माना टीम, मन मन क्या चीज है, मन के चार एस्पेक्ट है, उसे इंग्लिश में कहते हैं टीम, टी फॉर थॉट्स, थॉट्स माना विचार संकल्प, ई फॉर इमोशंस, इमोशंस माना भावनाएं, ए फॉर एटीट्यूड्स मतलब वृत्ति, और एम माना मेमोरीज स्मृति। तो स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प ये चारों मन से पैदा होते हैं, मन के अंदर है, मन की चार एस्पेक्ट है। तो ये सातों एनर्जी मन के माध्यम से होती है बॉडी में जाती है। अगर अब ज्ञान को दिमाग में जाना है कैसे जाएंगी, यहां ज्ञान है, आपने जैसे आप ज्ञान सुन रहे हैं और ये दिमाग में जाके स्टोर होना चाहिए तभी तो आगे काम आएगा, नहीं तो काम ही नहीं आएगा। तो कैसे काम कैसे जाएगा, अगर मान लीजिए मेरी स्मृति मन के बारे ज्ञान के बारे में नेगेटिव है, मैं पहले बहुत सारे जगह पर गया हूं ज्ञान सुनने के लिए, राधा स्वामी में गया, आशाराम बापू के पास गया, स्वामीनारायण में गया, किंतु मैं लगता है कि नहीं ये सब लोग ऐसे फालतू की बातें करते हैं, इनमें कोई तथ्य तो होता ही नहीं है। जैसे आज की मुरली में था ना, लोग बस कुछ बातें सुना देते हैं फिर कुछ कहते पैसे चढ़ा दो। बाबा ने आज कहा ना कितनी भक्ति मार्ग में कितनी कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो हम क्या समझते हैं बैठ करके, बस स्मृति जो पुरानी स्मृति नेगेटिव है, एटीट्यूड यहां पर बैठ के सुन रहे हैं किंतु नेगेटिव एटीट्यूड है, भावना नेगेटिव है, संकल्प कुछ और चल रहे हैं। तो मैं भले ज्ञान आप सुन रहे हैं, कान सुन रहे हैं, आंखें देख भी रही हैं, किंतु क्या दिमाग में जाके बैठेगा ज्ञान, नहीं बैठेगा, वो यहीं ब्लॉक हो जाएगा। तो मन माध्यम है जिससे एनर्जी आत्मा से होती कहां जाती है, ब्रेन में जाती है। आत्मा ज्ञान से दिमाग को नरिश करती है, जितना अधिक ज्ञान आत्मा में है उतना ही दिमाग आपका अधिक क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव माना अधिक नई नई बातें सोच सकता है, नई रिसर्च कर सकता है, अर्थात उसको अंदर इंटेलिजेंस भी होती है, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होती है और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी होती है। तीन तरह की इंटेलिजेंस होती है ना, एक कहते हैं इंटेलिजेंट फिजिकल इंटेलिजेंस कहते हैं, एक इमोशनल ताकि दूसरों को सहयोग दे सके, एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस हम सबको बराबर समझे, और चौथी आजकल एक और क्यू आया है उसे कहते हैं हैप्पीनेस क्वोशेंट, HQ कहते हैं, अर्थात सदा खुश रहे, वो भी दिमाग में ही होती है, दिमाग से ही, वो भी आत्मा की। जब ये तीनों एनर्जी बैलेंस में होंगी ना, ज्ञान से जब दिमाग में ABCD जब क्लियर होगा तो ही हमारा दिमाग खुश रहेगा। बाबा भी कहते हैं ना, अगर ज्ञान होगा बुद्धि में तो क्या होगा, अपार खुशी में गदगद होते रहेंगे। तो ये जो है ज्ञान से आत्मा दिमाग को नरिश करती है, पवित्रता से आत्मा पांच कर्मेंद्रियों को, आंख को, नाक को, मुख को, कान को और स्किन को, त्वचा को और इम्यून सिस्टम को नरिश करती है। शांति से आत्मा लंग्स को, फेफड़ों को नरिश कर रही है। जितनी अधिक शांति होगी
उतना ही फेफड़ों से हम गहरा सांस ले सकते हैं, गहरा और धीरे धीरे सांस लेते हैं। जितनी चिंता होगा, डर होगा अंदर, तो सांस ऊपर ऊपर चलेगा, फास्ट चलेगा, जल्दी जल्दी चलेगा। होता है डर में क्या होता है, देखा है डर में क्या होता है, सांस जल्दी जल्दी चलता है और ऊपर ऊपर चलता है, छाती चलती अंदर बाहर होती दिखाई देती है। और जब बच्चा सो रहा होता है, आदमी सो रहा, तो क्या होता है, पेट अंदर बाहर होता दिखाई देता है, ऐसा होता नहीं होता है। तो पेट ऊपर अंदर बाहर होना माना नीचे फेफड़ों तक ऑक्सीजन जा रही है, और छाती ऊपर नीचे होना माना सिर्फ छाती ऊपर नीचे माना आधे फेफड़े में सांस जा रहा है, आधे में नीचे में नहीं जा रहा है, अर्थात बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, राइट। तो कहा जाता है श्वास गिन के मिलते हैं इंसान को, साल गिन के नहीं मिलते हैं। एक मिनट में हम 14 बार सांस लेते हैं, मान लीजिए 14 बार के हिसाब से, एक मिनट में 14 बार के हिसाब से मेरे 10 साल बाकी हैं अभी, किंतु अगर मैं हर समय चिंता में रहूं, गुस्से में रहूं, तो क्या होगा, मेरे श्वास 14 की बजाय एक मिनट में 25 बार चलेंगे, 30 बार भी चलेंगे। तो जो श्वास 10 साल चलने थे, वो श्वास क्या होंगे, 5 साल में खत्म हो जाएंगे, मुझे 5 साल में शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसकी बजाय मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करता रहूं, बाबा को याद करता रहूं, तो क्या होगा, मेरे श्वास एक मिनट में से 6 बार ही चलेंगे, 7 बार ही चलेंगे, गहरे चलेंगे और धीरे धीरे स्लो चलेंगे। तो मेरी उम्र वही 10 साल जो सांस चलने थे 14 बार के हिसाब से, यही मेरे 10 साल के बजाय 20 साल चल जाएंगे। इस तरह से योग से आयु बढ़ती है। और ये मेरा 24 घंटा प्राणायाम हो रहा है, मुझे प्राणायाम करने की आवश्यकता है क्या, नहीं, मेरा 24 घंटा ही प्राणायाम है, मेरी ब्रीदिंग अपने कंट्रोल में है ना 24 घंटा। आधा घंटा मैं प्राणायाम करूं और बाकी 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 टाइम गुस्सा करता हूं, तो क्या फायदा है, कुछ फायदा नहीं है, चिंता करता रहूं तो फायदा नहीं ना। तो ये जो है ऑटोमेटिक प्रोसेस हमारे अंदर चल रहा है। आत्मा प्रेम से हार्ट को नरिश करती है, जितना अधिक प्रेम आत्मा में है उतना ही हार्ट की नसों में खून ज्यादा अच्छा बहता है। प्रेम की वजह गुस्सा है तो हार्ट की नसें सिकुड़ जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं और हार्ट अटैक आ जाता है। जो लोग अधिक गुस्सा करते हैं उनको अधिक हार्ट अटैक्स आते हैं, जो थोड़ी थोड़ी बात को फील ज्यादा करते हैं उनकी भी नसें सिकुड़ जाती हैं, प्रेम बहता ही नहीं है हार्ट में, तो हार्ट की नसें बंद हो जाती हैं। आत्मा खुशी से लीवर को और पेट को नरिश करती है, जितना अधिक खुशी होती है उतना ही हमारा हाजमा अच्छा होता है, इसलिए कहा जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अगर आपने कैसा भी खाना खाया हो, चिंता हो, टेंशन हो, गम हो, कोई उदासी हो, तो खाना पचता नहीं है, और अगर आप खुश हैं तो थोड़ा सा भी कैसा भी खाना खा ले पच जाता है। आत्मा आनंद से हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, जो हार्मोन्स निकलते हैं, थायराइड का हार्मोन, पेनक्रियास का, एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन, जो आपस में हार्मनी पैदा करते हैं समाज बॉडी के अंदर, उन हार्मोन्स को नरिश करती है। और शक्तियों से आत्मा बॉडी के मसल्स को, बोन्स को, ज्वाइंट्स को नरिश करती है। जैसे अगर आपको एक इंसान को सोचें आप, एक इंसान बिना हड्डियों का आदमी कैसा होगा बताओ, बिना हड्डियों के आदमी कैसा होगा, बोन्स के, शक्ल होगी उसकी, खड़ा होगा, कैसे होंगे, गोल 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 नहीं, सोफे पे बैठने की आवश्यकता होगी क्या, होगी नहीं ना। तो जैसे एक इंसान बिना हड्डियों के इंसान नहीं है, ऐसे ही एक इंसान बिना शक्तियों के इंसान नहीं है। परखने की शक्ति ना हो, निर्णय करने की शक्ति ना हो, विस्तार को सार में लाने की शक्ति ना हो, समेटने की शक्ति ना हो, सहन, सामना, समाना, सहयोग ना हो, तो क्या होगा, कहते ना इंसान, आप इंसान हो क्या, आपको इतनी समझ भी नहीं है, इतनी बुद्धि भी आपके पास नहीं है, ऐसा बोलते हैं ना। तो सातों एनर्जी, और हर जोड़ का मतलब क्या है, कोई ना कोई शक्ति है। गर्दन माना फ्लेक्सिबिलिटी ना, हाजी और नाजी करने की शक्ति है ना। कमर माना बेंड करना, आगे झुकना। हाथ माना सहयोग करना है ना, ऐसे हर जोड़। घुटने माना समेटना, कहीं जाना हो तो समेट के जाएंगे ना, घुटनों से जाएंगे ना, घुटने ना हो तो जा सकते हैं कहीं। तो मतलब हर जोड़ का मतलब कोई ना कोई शक्ति है। और सातों एनर्जी मिलकर बॉडी से टॉक्सिन बाहर निकालते हैं, किडनी के द्वारा और पसीने की ग्रंथि के द्वारा। इस तरह से बॉडी हमारी कार्य करती है। और बीच में मन है, मन में स्मृति, वृत्ति, भावना और संकल्प है। बचपन से जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ हम खाते हैं पीते हैं, वो सब अंदर स्टोर हो जाता है, स्मृति के रूप में स्टोर हो जाता है। और वो स्मृतियां हमारे स्मृति जैसी स्मृति होती है, फिर वैसे वैसा हमारा एटीट्यूड बनता है, और जैसे हमारा वृत्ति बनती है, फिर वृत्ति से वैसी भावना पैदा होती है, और जैसी भावना होती है फिर वैसे हमारे विचार चलते हैं। अगर दूसरी तरह से देखें तो हमारी बुद्धि में जो भरा है, हमारी बुद्धि में क्या भरा है, अगर बुद्धि में हमारी बुद्धि सत्व प्रधान है, सत्वगुणी बुद्धि है, अर्थात इस बुद्धि में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां भरी हैं, तो उस बुद्धि से क्या होगा, अच्छे संकल्प पैदा होते हैं। और जब शक्तिशाली संकल्प पैदा होते हैं तो शक्तिशाली संकल्प भावना में बदल जाते हैं, और जब भावना में बदलते हैं, शुभ भावना में बदल जाते हैं, तो भावना जब से हमारी वृत्ति बदलती है, एटीट्यूड बदल जाता है, और वृत्ति जब वृत्ति हमारे अंदर बदल जाती है तो हमारी स्मृति चेंज हो जाती है, और स्मृति से संस्कार बदलते हैं, संस्कार बनते हैं। अगर हमारी बुद्धि तमोप्रधान है तो क्या होगा, हमारे संकल्प गलत उठते हैं, नेगेटिव उठते हैं, नेगेटिव संकल्प से नेगेटिव भावना पैदा होती है, दुर्भावना पैदा होती है, दुर्भावना से हमारी वृत्ति गलत हो जाती है, वृत्ति हमारी खराब हो जाती है, एटीट्यूड दूसरों के प्रति बॉडी कॉन्शियसनेस का आ जाता है, देहभान का एटीट्यूड, ईगो आ जाती है, द्वेष, ईर्ष्या द्वेष हमारे व्यवहार में आ जाता है, हमारी नजर दृष्टि गंदी हो जाती है, दूसरों के प्रति देखो देखने लगते हैं, है ना, अपराध भावना अंदर आने लगती है, क्रोध आने लगता है दूसरों को देख के, है ना, मोह पैदा होता है, लोभ पैदा होता है, हमारे व्यवहार में लोभ और मोह आ जाता है, विकार पैदा हो जाते हैं। तो तमो प्रधान बुद्धि से नेगेटिव संकल्प उठते हैं, भावना खराब हो जाती है, वृत्ति नेगेटिव आत्मिक की बजाय देहिक वृत्ति हो जाती है, और स्मृति भी फिर वो हमारे अंदर जमा हो जाता है, और उसके हिसाब से तमो प्रधान संस्कार हो जाते हैं। तो बुद्धि सतो प्रधान है तो संकल्प श्रेष्ठ संकल्प होंगे, भावना शुभ भावना होगी, वृत्ति आत्मिक हो जाएगी, और स्मृति में बाबा आ जाएगा, संस्कार हमारे फरिश्तों के हो जाएंगे, देवता ही संस्कार हो जाएंगे। अब तो अभी बाबा ने हमें क्या दिया है, बाबा ने हमें गिफ्ट दिए, सभी को कौन सी गिफ्ट दिए बताओ, पैदा होते ही वो गिफ्ट मिली है हमको, कौन सी गिफ्ट, दिव्य सतो प्रधान बुद्धि, दिव्य सतोगुणी बुद्धि। अभी संडे को मुरली चली थी, एक संडे की मुरली थी, 71 की मुरली थी, हमें पैदा होते एक गिफ्ट मिली है बाबा से, वो कौन सी मिली है, दिव्य सतोगुणी बुद्धि, देवी माने देवी, सतोगुणी माने जिसमें सातों गुण भरे हुए हैं, तो हमको गिफ्ट मिली है। अब उस बुद्धि को हमें यूज करना है, हमारे पास पुरानी बुद्धि भी है, तमो प्रधान बुद्धि भी है, किंतु कई लोगों की आदत होती है, नई गिफ्ट मिलती है ना, उसको तो उठा के संदूक में रख देते हैं, अलमारी में रख देते हैं, और पुरानी चीज को यूज करते रहते हैं। बाबा के बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, जो बाबा से गिफ्ट मिली उसको साइड में रख देंगे, और जब कार्य व्यवहार में आते हैं तो कौन सी बुद्धि यूज करते हैं, वही पुराने वाली। जब भाई बहनों से मिलेंगे ना यहाँ के सेंटर पे, या मधुबन में आके, तो उस गिफ्ट को यूज करते हैं, और घर में लौकिक में वही पुरानी बुद्धि को यूज करते हैं, ये गलत है। अब जो पुरानी है ना हमारी बुद्धि, उसको यूज नहीं करना है, कौन सी बुद्धि को यूज करना है, जो बाबा से हमें गिफ्ट वरदान के रूप में मिली है, तो उस बुद्धि को यूज करके उससे संकल्प करने हैं, अर्थात जो बाबा हमें मुरली सुनाते हैं ना, उस आज बाबा ने क्या कहा, जैसे आज की बाबा ने मुरली कहा ना, विचार सागर मंथन करो, सुबह सुबह उठते ही उगारो, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, आज बाबा ने क्या कहा, तो उसको जितना हम यूज करेंगे संकल्प को, सबसे बड़ी बात क्या है, आज आत्मा में तो एनर्जी कम है, किंतु मन हमारा नेगेटिव हो गया है, हमारी टीम नेगेटिव हो गई है, स्मृति वृत्ति भावना और संकल्प नेगेटिव हो गए, उसको कैसे पॉजिटिव बनाए, वो हमको बदलनी है खुद को। बाबा ने बुद्धि हमको दी है, किंतु मन और संस्कार हमको परिवर्तन करने हैं, तो जब मन और संस्कार परिवर्तन करेंगे तो वो एनर्जी जो बाबा से हम अमृत वेले लेते हैं, कल बाबा ने मुरली में कहा कि अमृत वेले बहुत अच्छा पावरफुल योग करते हैं, किंतु जब कर्म में आते हैं तो क्या होता है, जब कर्म योगी बनते हैं तो क्या होता है, कार्य व्यवहार में वो स्थिति खत्म हो जाती है, वो अटेंशन नहीं रहता हमारा, सम्मान नहीं रहता है हमारे अंदर। मैं आत्मा करावनहार हूं, कर्मेंद्रियां करणहार है, वो स्थिति खत्म हो जाती है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए जो बाबा ने दिव्य सतोगुणी बुद्धि हमको गिफ्ट दिया, वरदान दिया है, उसको बार बार यूज करें, उसी को हर समय यूज करें। उसमें क्या लिखा है, उस गिफ्ट में क्या है? एबीसीडी। पहली एनर्जी क्या? एबीसीडी। मैं आत्मा हूं, परमात्मा की संतान हूं, मेरे सरस संबंध उसके साथ है। इस संसार रूपी ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो अच्छा हो रहा, जो होने वाला बहुत अच्छा होने वाला। इसलिए बेफिक्र बादशाह हूं, बेगमपुर का बादशाह हूं, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, ये मेरे, ये एनर्जी मुझसे यहां से निकल के सारी बॉडी में जा रही, इससे ही मेरी बॉडी चल रही है। परमात्मा मेरा पिता है, वो ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर, शांति का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, आनंद का सागर, शक्तियों का सागर है। मुझे रोग क्यों आए? मन के रोग क्यों आए हैं? चिंता क्यों हुई? गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा क्या चीज है? अंधेरा क्या चीज है बताओ? अंधेरा क्या चीज है? अंधेरा किसे कहते हैं? लाइट की कमी को अंधेरा कहते हैं ना, लाइट नहीं हो तो अंधेरा कहते हैं। गुस्सा क्या चीज है? अंदर शांति और प्रेम नहीं है तो गुस्सा है ना। शांति और प्रेम अंदर नहीं हो तो गुस्सा कहेंगे ना, है ना। तो शांति और प्रेम आएगा तो गुस्सा रहेगा अपने अंदर, रहेगा। अंदर खुशी रहेगी तो चिंता आएगी क्या? अशांत मन रहता है, अगर शांति रहे तो अशांत हो सकता है? मन हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता। हो सकता है अगर अंदर आनंद रहे तो उदास हो सकते हैं हम? तो ऐसे ये जो जितने भी मन के रोग है ना, ऐसे नहीं जाएंगे। इन सात गुणों की कमी को ही मन के रोग कहते हैं। ये सात गुण अंदर भर जाएंगे तो मन के रोग खत्म हो जाएंगे। हमारी स्मृति में सातों एनर्जी भर जाएंगी, स्मृति में सातों एनर्जी भर जाएंगी, वृत्ति में सातों एनर्जी भर जाएंगे, भावना में सातों एनर्जी भर जाएंगी, और हमारे संकल्पों में सातों एनर्जी भर जाएंगे। स्मृति में बाबा को बैठा दो तो वृत्ति अपने आप आत्मिक हो जाएगी, वृत्ति आत्मिक हो जाएगी तो सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना आप ही हो जाएगी। जब हमारी भावना सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना होगी तो अपने आप ही श्रेष्ठ विश्व कल्याण के संकल्प चलेंगे, नहीं ऐसा होगा? तो हमारा मन क्या होगा, एकदम से क्या हो जाएगा? सुमन बन जाएगा। मन क्या बन जाएगा? सुमन। सुमन माना फूल, है ना, सुमन। सुमन माना अच्छा मन। तो फिर जो बाबा से हम सुबह सुबह अमृत वेले योग करते हैं ना, वो अमृत वेले सातों एनर्जी जो भरते हैं ना, वो सातों एनर्जी क्या होगी? मन के माध्यम से होती हुई, अभी तो मन ब्लॉक कर देता है एनर्जी को, फिर मन के माध्यम से होती सारी बॉडी के एक अंग में खूब बहेगी। और एनर्जी बहेगी तो क्या होगा? तन के रोग भी आप ही खत्म हो जाएंगे। पेट को खुशी मिलेगी तो क्या होगा? हाजमा अच्छा हो जाएगा। दिल को प्यार मिलेगा तो दिल की नसें खुल जाएंगी, ब्लॉक खुल जाएंगे, बाईपास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, एंजियोप्लास्टी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फेफड़ों को शांति मिलेगी तो सांस खूब बॉडी में ऑक्सीजन जाएगी। दिमाग में ज्ञान जाएगा तो क्या होगा? सिर का दर्द खत्म हो जाएगा, नहीं होगा? अगर आपके अंदर इम्यून सिस्टम जाए, आंखों में पवित्रता आएगी, नाक में, कान में, तो खूब सारी जब एनर्जी दिमाग में जाएगी, आंखों में जाएगी, नाक में जाएगी, तो क्या होगा? आपके पांचों कर्मेंद्रिया क्या हो जाएंगे? एकदम कमल कमल जैसी हो जाएंगी। कमल नयन, कमल मुख, कमल करण, कमल नासिका, कमल हस्त, ऐसी एनर्जी भर जाएगी, जैसे न्यारे प्यारे हो जाएंगे सब, किसी से अटैचमेंट खत्म हो जाएगी, है ना। इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, हार्मोन्स थायराइड में या थायराइड की बीमारी ठीक हो जाएगी, डायबिटीज ठीक हो जाएगी, है ना। खूब आनंद में रहेंगे तो डायबिटीज खत्म। डायबिटीज क्यों होती है? मन में कड़वाहट होती है तो डायबिटीज होती है, फिर मीठा खाने को दिल करता है ना। ऐसे बहुत सारी स्टडीज हुई हैं। मूड डिसाइड्स योर फूड। आप क्या खाते हैं, आपका क्या खाने को दिल करता है, वो आपका मूड डिसाइड करता है। अगर आप कड़वा अंदर महसूस करते हैं तो मीठा खाने को दिल करता है। अगर ड्राई, आप बहुत अंदर ड्राई महसूस कर रहे हैं तो आप फ्राइड खाने को दिल करता है, तला हुआ खाने को दिल करता है। अगर अंदर से बहुत बोरिंग हो रहा है तो चटपटा खाने को दिल करता है। ऐसे 100 से ज्यादा मेंटल टेंडेंसी स्टडी की गई है और उसके अनुसार बीमारियां होती हैं फिर इंसान को। तो अगर हम सातों इस तरह से, और ये स्टडी आई है, एक रिसर्च हुई है कि 4 से 5 के बीच में अगर आप 20 मिनट आनंद की स्थिति में आ चले जाएं, तो आपके जो यहां पर हमारे हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड, 9 हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलते हैं, 8 पिट्यूटरी से निकलते हैं, 1 पीनियल ग्लैंड से निकलता है, तो ये 18 हार्मोन आपको सुबह सुबह 4 से 5 के बीच में एक्यूरेट निकलाएंगे, हार्मनी में निकलेंगे। और अगर एक बार ये हार्मोन ठीक निकल गए सुबह सुबह, पहली पहली पल्स दिन में भी निकलते हैं, किंतु जैसी पहली पल्स निकलती है उसके अनुसार दिन में निकलते हैं। पहली पल्स अगर दिन में छोटी है, ऊपर सुबह सुबह छोटी है, थोड़ा सा निकला है और ऊपर नीचे निकले हैं, तो सारा दिन भी ऐसे निकलते रहेंगे। तो अगर सुबह सुबह हार्मोनियस में ना सामंजस्य वाली पल्स यहां से सब 18 चीजें निकली हैं, तो अगले 24 घंटे में अगर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, घुटनों का दर्द है, एसिडिटी है, कमर का दर्द है, या और कोई बीमारी है, सांस की बीमारी है, गठिया की बीमारी है ना, तो अगले 24 घंटे में ये बीमारियां कम हो जाएंगी। हार्ट की बीमारी है, अगर सुबह सुबह आनंद की स्थिति में रह गए तो 20 मिनट कब से कब तक, कब से कब के बीच में, 4 से 5 के बीच में। आनंद कभी आ सकता है, सिर्फ एक परमात्मा को आनंद का सागर कहा, किसी इंसान को नहीं कहा गया है। अर्थात जब आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाए, आनंद के सागर में खो जाए, तो आनंद की स्थिति आ सकती है। इसलिए अमृत वेले का महत्व है, ये साइंस ने अब बताया है। साइंस पहले जानती नहीं थी, तो साइंस पहले ये बात जानती नहीं थी, तो अब हमको इसके लिए अभी ये प्रयोग हमको करना होगा। सुबह अमृत वेला बहुत पावरफुल चाहिए, आत्मा परमात्मा के प्यार में खो जाए, लवलीन हो जाए, तो ये सातों एनर्जी हमारे अंदर आएंगी। और अगले 24 घंटे में सात हमारी हर बीमारी, शरीर का कोई भी रोग, मन का भी और तन का भी कम होता जाएगा। अगर हम ये सुबह सुबह राजयोग मिस कर देंगे, आधा घंटा का, 20 मिनट का अनुभव मिस करेंगे, तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, शुगर बढ़ जाएगी, मतलब हमारी हड्डियों का दर्द बढ़ जाएगा, कमर का दर्द बढ़ जाएगा, ये एसिडिटी, जो भी रोग है वो अगले 24 घंटे में और बढ़ जाएगा। तो हमको ये अभ्यास करना है, आनंद की स्थिति का योग चाहिए। इसके लिए सुबह उठ के ब्रश करके, फ्रेश होके, मुंह हाथ धोके, बहुत जैसे किसी वीआईपी से मिलने जाते हैं ना, किसी बहुत बड़े वीआईपी से मिलने जाते हैं, क्या करते हैं, बहुत तैयार होके जाते हैं ना, क्या सोते सोते चले जाते हैं, उठे मुंह धोया नहीं, वैसे उठे चलो भाई, चलो वीआईपी से मिलके आते, प्रधानमंत्री से मिलना, चलो उठ के चले गए, ऐसे मिलते हैं क्या? प्रधानमंत्री से मिलना हो तो भी कितना तैयार होके जाते हैं, है ना, और यहां पर किससे मिलने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री के पिताजी से मिलने जा रहे हैं, तो कैसे जाना चाहिए, जैसे जैसे किसी बड़े वीआईपी से मिलने, बड़े अच्छे तरह से सज धज के, बाल वगैरह कॉम करके अच्छे से ना, क्रीम श्रीम लगा के, है ना, अच्छे वाइब्रेशन के साथ, उमंग से, खुशी में, खुशी से बैठो योग करने, ऐसे नहीं, बहुत खुशी में आके बाबा को याद करो। और अमृत वेला कनेक्शन किसका लगेगा, जो सारा दिन आत्मिक स्थिति का अभ्यास करेगा, सारा दिन बाबा की श्रीमत पे चलेगा, उसको अगले दिन अमृत वेला पावरफुल लगेगा, नहीं तो पावरफुल नहीं होता। सारा दिन ये जो सारा दिन की स्थिति का, आज का सारा दिन आप कैसे रहे हैं, उसका इनाम अगले दिन है पावरफुल अमृत वेला। आपने सारा दिन अलबेलेपन में रहे, सोए भी अमृत अलबेलेपन में, तो अमृत वेला पावरफुल नहीं होगा। तो 4 से 5 ऐसे 20 मिनट पावरफुल, कम से कम 30 मिनट तो बहुत अच्छी बात है, पर 20 मिनट तो बहुत पावरफुल योग, एकदम बाबा की याद में लवलीन, बाबा की गोद में, बस परम धाम में, बिंदी मन बिंदी बाप को याद करना, निराकार स्थिति जिसमें विक्रम विनाश होते, और फिर 8 बजे तक चुप रहो, क्योंकि 8 बजे टेंशन वाले हार्मोन यहां से निकलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड से। तो सुबह से लेकर 4 बजे से लेकर 8 बजे तक जो कुछ आप टीम माना, जो विचार, भावनाएं, स्मृति वृत्ति जो लेके लेके आते हैं, उसके अनुसार टेंशन वाले हार्मोन निकलते हैं। अगर ज्यादा निकल गए तो क्या होगा, सारा दिन जल्दी चिंता, गुस्सा, अपने आप गुस्सा आता रहता है, चिंता आती रहती है, उदासी आती रहती है, क्योंकि 8 बजे वो हार्मोन निकलेंगे। नेगेटिव टीम अगर रखेंगे सुबह से लेके 8 बजे तक, नेगेटिव टीम हम करते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल करते हैं, दूसरों से बातें करते हैं, दूसरों से कोई बात नहीं करो, 8 बजे तक साइलेंस, एकदम बाबा की याद, और 7 से 8 मुरली, क्योंकि मुरली माना पॉजिटिव टीम, मुरली माना 100% पॉजिटिव स्मृति। हमें क्या बाबा स्मृति दिलाता है? आप कौन थे? देवी देवता थे। कौन से महल थे हमारे? सोने के महल थे, हीरे जवाहरात लगे हुए थे, है ना, पुष्पक विमान थे। क्या क्या स्मृति हमको आती है ना? हमारे संबंध कैसे होंगे वहां? बहुत मीठे होंगे। वृत्ति कैसी? आत्मिक वृत्ति, वहां तो नेचुरल आत्मिक वृत्ति है। भावना कैसी होगी? 100% शुभ भावना, शुभकामना होगी। और संकल्प कैसे होते हैं? तो बाबा की मुरली माना 100% पॉजिटिव टीम। तो 7 से 8 मुरली सुन ली, तो मुरली भी बाबा की गोद में बैठ के सुनी, तो क्या होगा? आपके जो टीम एकदम पॉजिटिव होगी ना, तो ये टेंशन वाले हार्मोन कम निकलते हैं, खुशी वाले ज्यादा निकलते हैं, तो सारा दिन खुशी में रहते हैं। फिर आपको जरा भी जल्दी, चिंता, गुस्सा, उदासी सारा दिन नहीं आएगी, एनर्जी खूब बहेगी अंगों में। और फिर आपको क्या करना है? शुद्ध सात्विक आहार। एनर्जी बॉडी से निकल के बाहर कैसे आएगी? जब आपकी आप शुद्ध सात्विक आहार ग्रहण करेंगे। शुद्ध माना परमात्मा की याद में बनाया हुआ, परमात्मा की याद में खाओ, फल सब्जी अंकुरित, है ना, दूध हल्का बिना मलाई वाला, है ना, नहीं तो पहले ज्यादा मोटे जाएंगे, भूकंप आने शुरू हो जाएंगे धरती पे। भूकंप क्यों आ रहे हैं अभी ज्यादा धरती पर? क्योंकि लोग ज्यादा खा रहे हैं, है ना, फ्राइड पराठा पकौड़ा समोसा खाते हैं ना ज्यादा। ये राशिक आहार है, पराठा पकौड़ा समोसा के राशिक आहार, इससे आलस आता है, अलबेलापन आता है। तामसिक आहार कौन सा? नॉन वेजिटेरियन, लहसुन प्याज, है ना, बासी पदार्थ, ये सब तामसिक आहार है। तामसिक माना ये उत्तेजना पैदा करते हैं हमारे अंदर, विकार काम क्रोध लोभ को पैदा करते हैं, मोह को पैदा, अहंकार पैदा करते हैं। तो ये ऐसे खाने नहीं खाने, हमको शुद्ध सात्विक आहार बाबा की याद में बनाओ, बाबा की याद में खाओ, समय पर खाओ, चबा चबा के खाओ। फिर रोज 45 मिनट सैर करो नाश्ते के पहले, कभी अंधेरे में सैर नहीं करनी है, सुबह लेटरिन जाके स्नान करके फिर बाबा की याद में 45 मिनट सैर करके आओ, फिर नाश्ता करो। शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध माना परमात्मा की याद में, सात्विक माना सातों गुणों का प्रयोग करते हुए। ज्ञान मेरे अंदर आ रहा है, पवित्रता आ रही है, शांति आ रही है, प्रेम सुखानंद शक्तियां आ रही है। और फिर शुद्ध सात्विक नींद, शुद्ध माना सोने से पहले अपना सारा पोता मेल बाबा को दे दो, बाबा आज सारा दिन ये हुआ, सारा दिन ये मुझसे गलती हो गई, ये अच्छा काम हुआ, ये मेरे से बुरा काम हो गया, ये पुरानी बात याद आ गई। सच जैसे एक बच्चा अपनी माँ को सब बातें बताता है ना, सब बातें बाबा को दे दो। फिर अपना चार्ट लिख के और बाबा की गोद में। हमारा घर कहां पर है? हमारा बेडरूम कहां है? ये जो हमारा बेड होता है ना, बेडरूम जो हमारा लौकिक बेडरूम है, ये हमारा है, ये तो हमारा क्या है, ये हमारा गैरेज है, ये हमारी बॉडी कार है। तो इस कार को बॉडी गैरेज में पार्क कर दो। हमारा रूम है, बेडरूम है सूक्ष्म वतन, और हमारा बेड कौन सा है? बाबा की गोद। तो वहां जाके सो जाओ। कहां जाके सोना है? गैरेज में मत सोना, है ना, एक हम लोग गैरेज में सो जाते हैं, इसलिए मच्छर मक्खी काटते हैं, सपने गंदे गंदे सपने, खराब खराब सपने आते हैं, है ना। तो कभी गैरेज में नहीं सोना आगे से, ना, बाबा के बच्चे कभी भी गैरेज में नहीं सोते हैं। कहां सोते हैं? कहां सोते हैं? अपने बेडरूम में। और थोड़ी सी दवाई, डॉक्टरों से हमारा हिसाब किताब है ना, डॉक्टरों से लेन देन की है, कुछ पिछले जमाने की जन्म की लेन देन है, फार्मेसिस्ट से लेन देन है, थोड़ी सी ब्लड प्रेशर की दवाई, डायबिटीज कुछ है हिसाब किताब, थोड़ा सा वो गोली भी खा लो, ताकि हमारे वो हिसाब किताब डॉक्टर से हिसाब किताब भी चुप्त हो जाए। तो इस तरह से सुबह 4 से 5 योग, फिर मुरली, और उसके बाद ये शुद्ध सात्विक आहार, शुद्ध सात्विक सैर, शुद्ध सात्विक नींद और शुद्ध सात्विक दवाई, बाबा की याद में दवाई खाओ, रोके मत। कई लोग रोके दवाई खाते हैं, फिर रोएंगे फिर खाएंगे दवाई, है ना, तो रोके नहीं खाओ, उसे भी बाबा की समझ में ड्राई फ्रूट समझ के खा लो। तो अगर आप ये करेंगे तो आपका मन भी सदा खुश रहेगा और बॉडी तो सदा ऐसी रहेगी फर्स्ट क्लास, और आपका ऑरा इतना बड़ा हो जाएगा, एनर्जी निकल इकट्ठी होती जाएगी आपके आसपास, आपको कभी कोई रोग नहीं आएगा। मतलब आपके आसपास इतना सुंदर ऑरा बन जाएगा कि उसमें नेचर भी आपको अटैक नहीं कर सकेगी, प्रकृति भी आपको सहयोगी बनेगी, दासी बन जाएगी। जहां तक आपका ऑरा होगा वहां तक विनाश नहीं होगा, उस ऑरा के अंदर कोई व्यक्ति आएगा वो भी बच जाएगा। ओके, ओम शांति।
सर